आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सानवी की थोड़ी मदद की इसे बनाने में, और बदले में इसने मुझे दाल चावल खिलाए, फिर कॉफी भी पिलाई। उसकी बात में मासूमियत कम, इरादा ज्यादा था, क्योंकि असल में वो इंद्र के सामने ये जताना चाहता था कि वो सानवी के करीब है। इंद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा, जहां तक मैं जानता हूं आर्यन, तुम्हें तो टमाटर पसंद ही नहीं। आर्यन हंसा, मग को हाथ में घुमाते हुए बोला, आदत डाल लेनी चाहिए इंद्र, अब मेरी पसंद बहुत बदल चुकी है हर चीज में। उसकी नजर इंद्र पर ठहर गई, गहरी चुनौती देती हुई, फिर सानवी पर फिसल गई, जैसे कह रही हो वो मेरी है, सिर्फ मेरी। सानवी ने माहौल को काटते हुए कहा, आप लोग बातें करो, मुझे कहीं जाना है बहुत जल्दी। कहाँ जाना है? आर्यन ने तुरंत पूछा, तुम तो मेरे साथ रेस्टोरेंट चल रही थी ना? नहीं, मुझे बाजार जाना है, उसने जल्दी से जवाब दिया। अचार बनाने का सामान लेना है, आज टाइम मिल रहा है तो जा रही हूँ। असल में वो भाग रही थी आर्यन से, उसकी नजरों से, उसके सवालों से। वो जानती थी अगर उसके साथ रेस्टोरेंट गई तो वहां से बात सिर्फ खाने तक नहीं रुकेगी। आर्यन का सामना अकेले में करना उसके बस की बात नहीं थी, अभी नहीं। अगर तुम कहो तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं जा रहा हूँ, इंद्र ने धीमी आवाज में कहा। बिल्कुल छोड़ दो, सानवी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, आज मुझे खाना नहीं बनाना। वो जल्दी से किचन से बाहर निकल गई, जैसे किसी अदृश्य आग से बचने की कोशिश कर रही हो। आर्यन उसकी जाती हुई पीठ को देर तक देखता रहा, फिर उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी, वो मुस्कान जो किसी जीत की नहीं, किसी जुनून की निशानी थी। सानवी का यूं भागना, उसकी नजरों से बचना, बातों को टालना, सब कुछ आर्यन के दिल को अजीब सा सुकून दे रहा था। वो जानता था कि सानवी उसे नजरअंदाज कर रही है, उसे दूर भाग रही है, मगर उसी दूरी में तो एक खिंचाव था जो उसे बार बार उसकी ओर खींच लाता था। आर्यन को अब तक जिंदगी में किसी ने ना नहीं कहा था, हर लड़की उसकी मुस्कान, उसके आत्मविश्वास और उसके नाम से पिघल जाती थी, मगर सानवी वो पहली थी जो उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी, और वही दीवार अब उसके दिल की सबसे गहरी चाह बन चुकी थी। वो धीरे से खुद से बुदबुदाया, उसके दिल में क्या है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, और एक दिन वो भी जान जाएगी। सानवी की जाती हुई छवि उसकी आंखों में ठहर गई, जैसे किसी अधूरी कहानी की आखिरी पंक्ति जो खत्म तो नहीं हुई, बस रुक गई है। थोड़ी देर बाद इंद्र ने धीमे स्वर में कहा, बताओ कहाँ जाना है, तुमने मुझे बताया ही नहीं। सानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, वहां खेत से ही फ्रेश सब्जियां मिल जाती हैं, अचार का सामान भी वहीं से मिल जाएगा। वो रुककर बाहर देखने लगी, असल में अचार तो बस एक बहाना था, वो जानती थी उसे अचार डालना नहीं, आर्यन से दूर जाना था। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने बात बदलते हुए कहा, चलो ऐसा करते हैं, आपके क्लब चलते हैं, वहां का मेन्यू वाला काम अधूरा है, वही खत्म कर लूंगी। इंद्र ने सधे हुए स्वर में कहा, नहीं मैं क्लब नहीं जा रहा, पहले मुझे एक और जगह जाना है। सानवी ने तुरंत कहा, तो फिर मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। इंद्र ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की जिद थी मगर लहजा बेहद शांत। तुम मेरे साथ चलो ना, वो बोला, बस थोड़ी देर, फिर तुम्हें जहां जाना होगा छोड़ दूंगा। सानवी ने हल्के से भौहें चढ़ाई, कहाँ? इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ तो चलो, खुद ही देख लेना। गाड़ी धीरे धीरे एक पुराने से गेट के सामने आकर रुकती है, सानवी बाहर देखती है, सामने दीवार पर लिखा है, बाल निकेतन अनाथ आश्रम। वो हैरानी से मुड़ती है, सर यहाँ? इंद्र ने इंजन बंद किया, मुस्कुराया और बोला, हाँ यही वो जगह है जहां मैं तुम्हें लाना चाहता था। लेकिन यहाँ क्यों? सानवी ने पूछा। इंद्र ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज में हल्की गर्माहट उतर आई। जब मैं छोटा था माँ मुझे यहाँ लाया करती थी, वो कहती थी दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना कभी मत भूलना, अब जब भी टाइम मिलता है मैं यहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। सानवी कुछ देर चुप रही। चलो अंदर चलते हैं, इंद्र ने कहा। सानवी धीरे से सिर हिलाकर गाड़ी से उतरी। गेट के अंदर कदम रखते ही बच्चों की हंसी की आवाजें गूंज उठी। कुछ बच्चे दौड़ कर आए, इंद्र अंकल आ गए। किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कोई पैरों से लिपट गया। सानवी के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो झुककर एक छोटी सी बच्ची के बाल संवारती है। इतने प्यारे बच्चे हैं, उसने हल्के से कहा। इंद्र ने खाने पीने के डिब्बे और खिलौनों का बैग निकाला। तुम भी मदद कर दो, उसने कहा। सानवी बच्चों के साथ बैठकर बिस्किट बांटती है, कुछ बच्चों से बातें करती है। धीरे धीरे वो हंसने लगती है, जैसे उसकी सारी थकान सारी बेचैनी कहीं खो गई हो। इंद्र दूर से उसे देखता है। वो मुस्कान जो अब सानवी के चेहरे पर थी शायद उसने पहले कभी नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे के बीच बैठ जाते हैं।
सानवी ने धीरे से कहा, सर यहाँ आकर एक अजीब सी शांति मिल रही है। क्लब में जितना शोर होता है उससे कहीं ज्यादा सुकून यहाँ है। इंद्र मुस्कुराया, मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा। कभी कभी जिंदगी की असली खुशियां बस एक मुस्कुराते चेहरे में मिल जाती हैं। आर्यन का ऑफिस। आर्यन अपने लैपटॉप पर झुका हुआ है, चेहरे पर तनाव और ध्यान दोनों है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है शिव मेहता। आर्यन बिना सिर उठाए बोला, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई है उसे चेक करवाओ, उसमें बहुत गलतियां हैं। शिव ने हंसते हुए कुर्सी पर बैठते हुए कहा, गोली मारो फाइनेंस डिपार्टमेंट की फाइल को यार, जरा अपनी फाइलों से बाहर भी जियो। फिर उसने चुटकी लेते हुए पूछा, तुम सानवी को लेकर क्यों नहीं आए कल रात? मैंने कहा था ना म्यूजिकल ग्रुप का प्रोग्राम देखने चलो। आर्यन ने फाइल बंद की, कुर्सी से पीछे झुक गया और मुस्कुरा कर बोला, मैं कैसे आता, सानवी तो घर में बिजी थी। मैं पूछने गया था मगर वो टमाटर की सॉस बना रही थी। शिव की आंखों में शरारत उभर आई। ओ तो अब तुम किचन विजिट भी करने लगे हो, सच बताओ तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है या नहीं? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, पता नहीं शिव, हम दोनों बहुत अलग हैं। वो तो मुझे बात भी नहीं करने देती, किसी और ही दुनिया में रहती है। शिव हंस पड़ा, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून होकर भी ऐसे हार मान ली तुमने? लड़की को अब तक प्रपोज भी नहीं कर पाए? आर्यन मुस्कुराया, फिर मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए बोला, कोशिश कर रहा हूँ यार, मगर जब भी उसके सामने आता हूँ वो खुद को मुझसे दूर कर लेती है। शिव ने सिर हिलाया, तो सीधा रास्ता अपनाओ, उसे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाओ और वहीं जाकर बोल दो, सानवी मुझे तुम पसंद हो, वो तुम्हारे ही घर में काम करती है, ज्यादा से ज्यादा ना कह देगी, इससे बुरा क्या होगा? आर्यन ने हल्की हंसी के साथ कहा, प्रपोज तो मैं तब करूं जब वो मेरे साथ कहीं जाए। कल रात तो बस इतना हुआ कि मैंने उसकी टमाटर की सॉस बनाने में थोड़ी मदद की, फिर उसने मुझे दाल चावल खिलाए अपने हाथ के बने हुए। शिव मुस्कुराया, मतलब आधा रास्ता तो तुम तय कर ही चुके हो मिस्टर टाइकून, अब बस उसे ये समझाना बाकी है कि तुम्हारे पास सिर्फ बिजनेस नहीं दिल भी है। आर्यन हल्के से हंस पड़ा, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसा जुनून जो हार नहीं मानता। वो सोचने लगा, शायद अगली बार सानवी को ना कहना इतना आसान नहीं होगा। शिव मुस्कुराया, फिर हल्के से बोला, वैसे आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही नूर है, लगता है सानवी का असर दिखने लगा है। आर्यन ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया, शायद, मगर वो तो मेरे किसी रंग में रंग ही नहीं रही। शिव ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा, तो फिर तुम उसके रंग में रंग जाओ, कभी कभी प्यार का मतलब जीतना नहीं बदल जाना होता है। एक बात पक्की है, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा नाम उस लड़की पर असर नहीं डाल पाएंगे, उसे जीतने के लिए तुम्हें वैसा बनना होगा जैसा वो है। आर्यन मुस्कुराया, कहने में आसान है करने में मुश्किल। शिव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर भी अच्छी बात है आर्यन।
जिंदगी में पहली बार तुम किसी के लिए बदलने की सोच तो रहे हो? दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर माहौल हल्का करने के लिए आर्यन ने पूछा, अच्छा छोड़ो, मेरी बहुत हो गई, तुम्हारा क्या हुआ रिया के साथ? शिव हंस पड़ा, यार मत पूछ, जिस म्यूजिक प्रोग्राम में मैं गया था वही रिया भी आई हुई थी। वो मुझसे नाराज थी और गलती भी मेरी ही थी, लड़की तो मानी हुई थी, मैंने खुद अपनी बेवकूफी से नाराज कर दिया। आर्यन हंसने लगा, तो अब क्या प्लान है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सोचता हूँ इस बार उसे मना कर सीधा शादी कर लूँ, कहीं देर ना हो जाए। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मुबारक हो मिस्टर शिव मेहता, मेरी नहीं तुम्हारी लव स्टोरी तो पूरी होनी चाहिए। दोनों हंस पड़े, एक बिजनेस टाइकून और उसका दोस्त जो उस वक्त किसी किशोर लड़कों की तरह अपनी लव स्टोरीज और ख्वाबों पर हंसते खेलते बातें कर रहे थे। उनकी हंसी देर रात तक कमरे में गूंजती रही, लेकिन आर्यन के दिल में कहीं गहराई में एक नाम अब भी धीरे धीरे धड़क रहा था, सानवी।